दूसरा सैमुअल अध्याय तीन पद एक। शौल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शौल का घराना निर्बल पड़ता गया। दाऊद ने अपनी एक कमजोरी दिखाई जो उस घोर पाप की ओर ले गई और उसकी बहुत बदनामी हुई। उसने पत्नियों और रखेलों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अतः हमारे यहां उसके 6 बेटों की सूची है जो कथा अनुसार हेब्रोन में पैदा हुए थे और सारे 6 के 6 अलग अलग पत्नियों से थे। इसलिए उसने अपने हरम में पत्नियों और स्त्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसका पुत्र सुलेमान तो इसे सीमा के बाहर ले गया था, परंतु दाऊद ने भी पत्नियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यही एक बात राजाओं को करने की मनाही थी। जब तुम राजा बनो तो वो अपनी पत्नियों को ना बढ़ाएं, लेकिन दाऊद ने ये करना आरंभ कर दिया था और ये दाऊद की शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है जो अंततः उसे बैतशेबा के साथ पाप में ले जाती है। अध्याय 3 पद 7। शौल की एक रखेली थी जिसका नाम रिस्पा था, वो अय्या की बेटी थी। शौल ने भी यही किया था, उसकी अनेक पत्नियां और रखेले थी। इस रखेल रिस्पा से शौल के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अध्याय 3 पद 7 में आगे लिखा है, और इश बशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया? अब ये झूठा इल्जाम था, ये एक घिनौना इल्जाम था। असल में दूसरे आदमी की रखेल के पास जाना, चाहे दूसरा आदमी मर चुका हो, उसके अधिकार और उसके राज्य को छीन लेने के प्रतीक होता था। आप याद कीजिए कि दाऊद के जीवन के बाद के दिनों में जब उसके पुत्र अबशलोम ने उससे विद्रोह किया था, जब अबशलोम अपनी सेना के साथ हेब्रोन से यरूशलेम को आ रहा था, तब दाऊद यरूशलेम से भागा था। जब अबशलोम शहर में आया, वो सीधा सब लोगों के सामने दाऊद के रखेलों के पास गया, अर्थात वहां गया जहां दाऊद की रखेले रहती थी, जो दाऊद के स्थान पर चढ़ना और दाऊद के स्थान को ले लेने को दर्शाता था। अतः उसका दोष लगाना था, तुम मेरे पिता की रखेल के पास अंदर गए, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्थात तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिता की जगह लेना चाहते हो? अध्याय 3 पद 8 और 9 में इस बोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सर हूं? आज तक तेरा पिता शौल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूं और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है? मैंने तुझे दाऊद के हाथों में नहीं पड़ने दिया है, देख मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तू मेरे विरुद्ध ये झूठा दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव ना करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब ध्यान दीजिए, वो जानता था कि परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई है कि दाऊद राजा होगा। इस सत्य को जानने के बावजूद कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाने की शपथ खाई थी, वो उसके विरुद्ध गया और इश-बोशेत को राज सिंहासन पर स्थापित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जानता था कि यह गलत है, फिर भी उसने किया। अध्याय 3 पद 10। अर्थात मैं राज्य को शौल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बर्शेबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। अब दान इसराइल की उत्तर में सबसे अंतिम हिस्सा था। ये वहां था जहां यर्दन नदी पृथ्वी से निकलती है और दक्षिण की तरफ जाती है। बर्शेबा दक्षिण की ओर अंतिम सिर पर था। दक्षिण के जंगल की सीमा पर यह एक जंगल का इलाका था। अतः ये एक प्रकार से इसराइल की उत्तर और दक्षिणी सीमाओं को दान से बर्शेबा तक गोलार्ध में जोड़ता है। अध्याय 3 पद 11 से लेकर 13 तक। और वो इश्बोशेत अब्नेर को कोई उत्तर ना दे सका, इसलिए कि वो उससे डरता था। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और ये भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इसराइल के मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए तब यदि पहले शौल की बेटी मीकल को ना ले आए तो मुझसे भेंट ना होगी। अब शौल ने दाऊद के साथ एक गंदी चाल चली थी और उसने दाऊद से वायदा किया था कि पिलिस्तियों को मारने के कारण उसकी बेटी दाऊद को पत्नी होने के लिए मिलेगी। उसने वायदा किया था, जो कोई भी उस पिलिस्ती दानव को मारेगा वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। परंतु उसने अपनी बेटी मेराब दूसरे व्यक्ति को दे दी और तब उसने सुना कि मीकल दाऊद से प्यार करती थी। उसने कहा, आह वो लोमड़ी की तरह चलाक है, वो उसे ठिकाने लगा देगी, इसलिए मैं उसे उससे शादी करने दूंगा। शौल चाहता था कि मीकल दाऊद को बर्बाद कर दे, हटीली और उद्दंड लड़की, इसलिए उसने ये अनुमान लगाया था कि वो सच में उसका जीना दुभर कर देगी। अतः उसने दाऊद की शादी मीकल से करने की अनुमति दे दी। लेकिन जब दाऊद शौल की उपस्थिति से भागा था तब शौल ने मीकल को दूसरे आदमी पलतियल को दे दिया था और वो उसका पति बन गया। ये दूसरा आदमी सच में मीकल का दीवाना था। मेरा मन दाऊद के लिए सराहना से भरा हुआ है, परंतु कभी कभी मैं उसे सराहते हुए रुक जाता हूं। इसका कारण है कि यहां वो बदले की भावना से भरा है। वो यहां अपने आत्म स्वाभिमान को साबित करना चाहता था, जिससे साबित करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। जब अब्नेर ने उसके पास ये संदेश भेजा, मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधना चाहता हूं, मैं सारे इसराइल को तुम्हारे हाथों में कर दूंगा, उसने या दाऊद ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी होगी, लेकिन जब तक तुम मीकल को नहीं लाओगे तो मुझसे नहीं मिल सकते। अब जैसा कि आपको बताया था कि हेब्रोन में उसने पहले ही स्त्रियों का एक झुंड इकट्ठा कर लिया था, अर्थात रखेलों और पत्नियों का एक झुंड। सच तो यह है कि वो इस लड़की को नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक तरह से अपने अहंकार को साबित करना चाहता था और कुछ भी नहीं। अध्याय 3 पद 14 से लेकर 22 तक। फिर दाऊद ने शौल के पुत्र इश्बोशेत के पास दूतों से कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पिलिस्तियों की खलड़ियां देकर दहेज अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इश्बोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश का पुत्र पलतियल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहुरिम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। वो उससे बहुत प्यार करता था। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वो लौट गया। और अब्नेर ने इसराइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में ये कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इसराइल को पिलिस्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। वो जान गया था कि दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त किया है और ये परमेश्वर का वचन। फिर अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इसराइल और बिन्यामीन के समस्त घरानों को जो कुछ अच्छा लगा वो दाऊद को सुनाए। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इसराइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वो कुशल से चला गया। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत ही लूट लिए हुए आ गए और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में ना था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वो कुशल से चला गया था। उस समय जब अब्नेर वहां आया, योआब वहां नहीं था। योआब के मन में अब्नेर के प्रति कड़वाहट भरी हुई थी, क्योंकि अब्नेर ने उसके भाई को मारा था। अतः जब योआब वापस आया तो लोगों ने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि अब्नेर यहां आया था और उसने दाऊद से एक वाचा बांधी है? योआब ने कहा, नहीं, तुम्हें पक्का यकीन है? हां, 3:26 से लेकर 29 तक। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे कुछ काम की बात करने, और वे उसको सिरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बात करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में दिल पर ऐसा मारा कि मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने ये सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय मैं अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वो योआब और उसके समस्त घराने को लगे। यहां दाऊद असल में योआब को उसके काम के लिए श्राप देता है। ये क्रूर था और उसने जो बदला लिया वो गलत था। दाऊद उसकी गलती को समझ गया था। ये योआब के घराने को श्राप देता है, एक भयानक श्राप। 3:29। और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखे मरने वाला सदा होता रहे। उसने एक तरह से उसके पूरे वंश का ही सफाया कर दिया। उसके घराने पर महामारी आए, वे लंगड़े हो जाए, वे तलवार से मारे जाए, वे भिखारी बने, वे अनाथ और कंगाल बने। 3:30-34। योआब और उसके भाई अबीशे ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं आरथी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर के कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे, ना तो तेरे हाथ बंधे गए और ना तेरे पांव में भेड़िया डाली गई, जैसा कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तो मारा गया। अतः दाऊद लोगों को दिखाकर योआब के काम के बारे में अपनी असहमति प्रकट करता है। अतः सब ये जान ले कि योआब ने जो किया उसे दाऊद ने अस्वीकार किया। योआब को और योआब के घराने को इसके लिए श्राप देकर और उसके अंतिम संस्कार पर एक बड़ा प्रदर्शन करके और अब्नेर के मौत पर विलाप करके उसने ये दिखा दिया। अध्याय 3 पद 35 और 36। तब सब लोग उसके विषय फिर से उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी वो और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसा ही जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अब दाऊद बहुत बुद्धिमानी के साथ अपना व्यवहार कर रहा था और परमेश्वर को उसका राज्य स्थापित करने के लिए काम करने दे रहा था। दूसरे शब्दों में, जबकि वो ये जानता था कि इसराइल पर राजा होने के लिए परमेश्वर की तरफ से उसका अभिषेक किया गया है, वो सोचता है, अगर परमेश्वर ने मुझे राजा होने के लिए अभिषेक किया है और परमेश्वर चाहता है कि मैं राजा बनूं, तो परमेश्वर हर परिस्थिति को संभालने में सामर्थी है। इसलिए दाऊद अपने लिए वहां कोई काम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो इन सब बातों को संभालने के लिए परमेश्वर पर छोड़ रहा है। वो अपना व्यवहार बहुत बुद्धिमानी और चतुराई के साथ कर रहा था और लोग उसको देख रहे थे और सच में उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे और करीब आ रहे थे, क्योंकि वो दिखा रहा था कि उसके पास सही बात करने का मन है और वो अच्छे कामों का अभिलाषी है, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं। भजन संहिता में एक जगह हमें बताया गया है, भजन संहिता 75 का 6 पद, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, अर्थात बढ़ती परमेश्वर से आती है। दाऊद सचमुच इस पर विश्वास करता था। वो वहां अपने आप को ऊंचा उठाने की और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो ये करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये अच्छा होगा कि हम में से हरेक इसी बात का प्रयत्न करे। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत लोग अपने काम और कार्यक्रम केवल बड़ाई के लिए करते हैं। संसार बड़ी बड़ी प्रसिद्धियों से भरा पड़ा है। हर कोई प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा है, परंतु दाऊद स्वयं को बढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहा था। वो सिर्फ परमेश्वर का इंतजार कर रहा था कि वो ऐसा काम करे। उसे परमेश्वर पर ऐसा दृढ़ भरोसा था, अगर परमेश्वर यही चाहता है तो इसे पूरा करने में भी परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति ऐसा समर्पण वास्तव में कैसा सराहनीय है। हम केवल अपने जीवन को परमेश्वर प्रति खुला रखें तो वो हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को अवश्य पूरा करेगा। मैं अपनी चेष्टाओं को त्याग दूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर यही चाहता है और यही उचित भी है। मेरी चेष्टाएं मुझे परमेश्वर की योजना से बाहर कर सकती है, अतः उचित तो यही होगा कि मैं बस बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं और कहूं, प्रभु अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, मैं तैयार हूं, परंतु काम तू ही करेगा। जब परमेश्वर ऊपर उठता है तब वो एक अनुपम अनुभव होता है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने यहां क्या काम किया है। हमने ना तो अखबार में और ना रेडियो पर विज्ञापन दिया, परंतु परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। कई साल पहले जब हम पुराने आराधनालय में थे तब परमेश्वर अपनी आत्मा और आशीषों को हम पर उंडेल रहा था। उस समय बहुत सारे हिप्पी बच्चे, लंबे बाल और नंगी परंपरा को मानने वाले आते और यीशु को ग्रहण करते थे। समाचार माध्यमों के लिए ये एक प्रकार का कौतूहल था। अनेक लेख छापे गए कि हम क्या कर रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट ने कहानी लिखी और हमारे कामों का विभिन्न पत्रिकाओं में बहुत प्रचार हुआ था। अभी कुछ समय पहले मैं इसराइल में था और वहां फ्रांस का एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, आप क्या चकसिमित हैं? मैंने कहा, हां। उसने कहा, ओ भाई, परमेश्वर की स्तुति हो, आपका काम बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने आपके बारे में 10 साल पहले फ्रांस में एक पत्रिका में पढ़ा था और आपकी फोटो देखी थी और मैंने आपको पहचान लिया है। मैंने सोचा, 10 साल पहले की बात और तुम मुझे अब भी पहचान गए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारा बहुत प्रचार हुआ, परंतु हमारा काम प्रचार प्रसार के लिए नहीं था, वो निष्ठा से पूर्ण था। और अब बहुत लोग हिप्पी चर्च और जीसस पीपल को देखने आते थे। मैंने टाइम पत्रिका में पढ़ा सैन डियागो के ब्लैक समुद्री किनारे के बारे में एक बड़ा लेख लिखा था। 20 बच्चों ने अपने सारे कपड़े उतारे और तैरने गए। टाइम पत्रिका ने इन जवान लोगों पर एक बड़ा लेख बना दिया, नशाखोरी, नंगे नहाना और इस तरह की बकवास, लोगों के बीच नंगे नहाना आदि। ये एक बड़ा समाचार था कि वहां सैन डियागो के समुद्री तट पर 20 बच्चों ने नंगे नहाया और ऐसा हुआ कि हम भी वहां बपतिस्मा करने वाले थे। वहां हजारों बच्चों का बपतिस्मा होना था। मैंने अपने आप में सोचा कि मुझे टाइम पत्रिका के धार्मिक संपादक को फोन करके बताना चाहिए कि कैलिफोर्निया के समुद्री किनारों पर कुछ बच्चों के नंगे नहाने का अलावा भी वहां बहुत कुछ होता है जो बहुत रोचक है। मेरा मतलब, आपको 20 बच्चे वहां नंगे नहाते हुए मिले हैं, परंतु आपने उन हजारों बच्चों को नहीं देखा जो वहां बपतिस्मा पा रहे हैं और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर रहे हैं। अगर 20 बच्चे नंगे तैरते हुए पत्रिका के समय और स्थान के लिए अर्थपूर्ण थे तो हजारों युवा क्यों नहीं जो वहां बपतिस्मा पा रहे हैं। कम से कम पत्रिका में एक कटाक्ष लेख के योग्य तो वे है ही। जब मैं अपना घर वापस जा रहा था मैं इसके बारे में सोचता रहा। मुझे टाइम पत्रिका के धर्म विभाग के संपादक को फोन करके बताना चाहिए कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक पत्रकार यहां भेजे और समाचार तैयार करें और टाइम्स पत्रिका के लिए ये एक अच्छी कहानी हो सकती है। मैं ये सब घर लौटते समय गाड़ी में सोच रहा था। परमेश्वर ने मेरे दिल में कहा, अब तक तुम्हारा प्रचार सहायक कौन था? मैंने कहा, परमेश्वर आप थे। उसने कहा, क्या तुम मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो? तुम लुक पत्रिका में थे,
तुम रीडर्स डाइजेस्ट में थे,
तुम टीवी चैनलों में थे, क्या तुम उस काम से संतुष्ट नहीं हो जो मैं कर रहा हूं? मैंने कहा, ओह परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितना बेवकूफ हूं कि जो यहां हो रहा है उसका प्रचार करूं और किसी को फोन करने की सोचूं। मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर से अपने उस विचार के लिए जो प्रचार पाने की मेरी इच्छा थी माफी मांगी।
मैं घर पहुंचा और वहां मेरे घर की बैठक में एक अनजान आदमी था। एक प्रकार से ये उन दिनों में असामान्य था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा, प्रिय, ये टाइम पत्रिका के पत्रकार है और इनको यहां भेजा गया है कि यीशु के लोग पर एक लेख लिखे। अतः उस आदमी ने अपना परिचय दिया, हाथ मिलाया और कहा, आपके पास क्या बपतिस्मा या ऐसी ही कोई सूचना है जिस पर हम अपनी पत्रिका में लेख छापे? मैंने कहा, ओ परमेश्वर, आप हमेशा ही एक दो कदम आगे रहते हैं, आपको ख्याति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के पैसों को प्रचार में खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपना काम करने में सामर्थ्य है। हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसका इंतजार करना कैसे लाभदायक होता है। जब कोई इंसान लक्ष्य को पाने का बहुत प्रयत्न करता है और आप कठिन परिश्रम करके प्रचार और तरह तरह की युक्तियों के द्वारा अपना लक्ष्य ख्याति पा लेते हैं, तब आपको उसे कायम रखने के लिए उसे धक्का लगाते रहना पड़ेगा। इस प्रकार ये अनंत प्रयत्न, प्रयास और चेष्टा का विषय बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सेवक लोग दिल के दौरे से और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे काम में बहुत परिश्रम और बहुत तनाव होता है। लेकिन जब आपको लक्ष्य पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, तब आपको उसे संभालने के लिए भी प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आप बस आराम कर सकते हैं, छुट्टियों में हवाई द्वीप समूह जा सकते हैं। यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा तो परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, अगर वो नहीं चाहता तो आपके सारे प्रयत्न उसे किसी कीमत पर संजो कर नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर अपने काम, अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम या सामर्थी है। दाऊद के पास ये गहरा ज्ञान था। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने में सामर्थी है, मुझे उसमें धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सामर्थी है। वो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कर रहा था, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था और ना ही अपनी ओर से प्रयास कर रहा था, वो सही बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रहा था। इस प्रकार इन सब बातों में हम दाऊद के उदाहरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अतः दाऊद ने जो कुछ किया था वो राजा को शोभा देता है, वो उचित रीति से व्यवहार कर रहा था। अध्याय 3 पद 37 से लेकर 39 तक। तब उन सब लोगों ने, वरन समस्त इसराइल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ, और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, प्रशंसा के सुंदर शब्द, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इसराइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। अतः योआब और उसका भाई अबीश के लिए दाऊद ने कहा, ये मेरे वश के बाहर है, परमेश्वर ही इन्हें संभाले। दाऊद ने बदला लिया, परंतु बहुत बाद में, जिसे हम शमूएल की किताब में आगे चलकर देखेंगे, दाऊद ने अंततः योआब को समाप्त कर दिया।